मेरे प्रिय युवा मित्रों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज के मुख्य विषय के तहत हम लोग जो कल बात कर रहे थे एमएसपी कानून के बारे में, उसी पर कुछ और मैं बातें करना चाहूंगा। लेकिन इससे पहले जो दूसरी खबरें हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा, न्यूज में भी ये बात थी कि जो हमारा रेल विभाग या रेल मंत्रालय कहना चाहिए, रेल मंत्रालय है, वह अब थीम पर आधारित पर्यटन सर्किल ट्रेन चलाने जा रहा है। थीम पर आधारित का क्या मतलब है? मतलब एक विषय है, उस विषय को लिया गया है और वो जो ट्रेन है उन विषयों से संबंधित स्थलों पर आपको ले जाएगी, तो उसका पूरा का पूरा भ्रमण करा देगी। जैसे इस ट्रेन के बारे में मैंने न्यूज में सुना तो मुझे एक घटना याद आ गई, और ये 7-8 साल पहले की घटना है, श्रीलंका की घटना। श्रीलंका में इस तरह की एक ट्रेन तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पर्यटन की व्यवस्था है जिसे रामायण यात्रा कहते हैं, रामायण यात्रा, और वो भारत से लोग जाते हैं और इसके बाद वहां जाने पर वहां जो व्यवस्था की गई है कि रामचरितमानस से संबंधित जो स्थल हैं उन सब का वो भ्रमण कराती है, और भारत सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई थी, कुछ राज्यों ने भी किए थे, जिसमें वो बकायदे छूट दिया करते थे कि अगर आप वहां से यात्रा करके आते हैं तो इस तरह से 50% जो खर्च है वो सरकार वहन करेगी और 50% आप वहन करेंगे। और चूंकि मेरी पत्नी और मुझे इसमें जाने का मौका मिला है, तो इसीलिए मुझे तुरंत याद आ गए थीम आधारित पर्यटन सर्किल ट्रेन के बारे में, और इसे नाम दिया गया है भारत गौरव। इसमें एक अच्छी बात यह है कि ये जो ट्रेन चलेंगी, जो रेलवे मंत्रालय का जो एक विभाग है IRCTC आप जानते होंगे, वो भी ट्रेन चलाएगी, और साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर के लोग भी बकायदे ट्रेन चला सकते हैं। वो रेल मंत्रालय से ट्रेन किराए पर ले लेंगे, लीज पर ले लेंगे, और जो भी व्यवस्थाएं होंगी, और इस तरह से वो बकायदे थीम पर आधारित इस तरह की ट्रेन चलाएंगे। आपको लग रहा होगा कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये पर्यटन से जुड़ा हुआ विषय है, पर्यटन, क्योंकि भारत पिछले कुछ सालों से टूरिज्म के क्षेत्र को डेवलप करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे कुछ समय पहले ही आपको मालूम है, अभी कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसका भी पर्पस यही है कि थीम आधारित पर्यटन को महत्व देना, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों, ये भले ही एक छोटा सा फैक्ट है, लेकिन अगर पर्यटन पर कुछ पूछा जाता है तो डेफिनेटली आपके आंसर में ये फैक्ट शामिल होना चाहिए। जो मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं उनके लिए एक छोटी सी सूचना है, कल के अखबारों में भी विस्तार के साथ था और आज भी है, कि भोपाल और इंदौर जो मध्य प्रदेश के दो बड़े शहर हैं, अब इन दोनों शहरों में बहुत जल्दी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने जा रही है। पुलिस कमिश्नर प्रणाली, मैं इस पर अभी बात नहीं करूंगा, लेकिन स्टूडेंट से ये कहना जरूर चाहूंगा कि अगर आप मध्य प्रदेश से हैं, या यूं कह लीजिए कि आप मध्य प्रदेश के स्टेट सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट से हों, तो इसकी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और अगर आप मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं और यहां तक कि IAS में बैठ रहे हैं, तो कोई ताज्जुब नहीं कि इंटरव्यू तक अगर आप पहुंच गए तो इस पर अच्छे खासे बहस की शुरुआत आपके साथ कर दी जाए, पुलिस कमिश्नर प्रणाली। आपको ध्यान होगा कि मैंने क्रिप्टो करेंसी पर आपके साथ विस्तार से बातें की थी, और इस बीच में क्रिप्टो करेंसी पर काफी कुछ लिखा भी जा रहा है। कल एक खबर आई है जो आज के अखबारों में भी है, कि जो हमारा अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने जा रहा है, इसमें बकायदे क्रिप्टो करेंसी पर एक विधेयक लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य होगा क्रिप्टो करेंसी को नियमन करना, यानी कि इसके सिस्टम को एस्टैब्लिश करना। इसकी जो बातें थोड़ी बहुत अखबारों से पता लगी हैं वो ये है कि हमारे देश में कई तरह की क्रिप्टो करेंसी होती हैं, मैंने आपको नाम बताए थे, उन पर प्रतिबंध लगेगा और हमारा जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा। देखिए, क्रिप्टो करेंसी तो बेसिकली डिजिटल करेंसी ही है ना, क्रिप्टो का मतलब ये हिडन, जो छिपा हुआ है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये अपनी डिजिटल करेंसी जारी करेगा। लेकिन चूंकि उसमें हमारे देश का जो सेंट्रल बैंक है, जो रिजर्व बैंक है, उसके पीछे उसकी ताकत है, तो उसकी वैधानिकता रहेगी, तो कम से कम जो ठगी हो जाती है वो नहीं हो पाएगी, जो इसका दुरुपयोग होता है वो दुरुपयोग रोक पाएगा। और ये बहुत ही विस्तृत विधेयक होगा, जिसमें बकायदे जो क्रिप्टो करेंसी में निवेश करना चाहते हैं, जो इसके डीलर बनना चाहते हैं, जो इससे संबंधित ऐप डेवलप करना चाहते हैं, जो माइनिंग करना चाहते हैं, सभी पक्षों पर विचार किया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी आप किसे कहेंगे, उसकी परिभाषा स्पष्ट होगी, इसके दायरे में क्या क्या आएंगे, इस पर टैक्स कितना लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये इस तरह से संबंधित जो भी भ्रम है इस विधेयक के आने के बाद उम्मीद की जा रही है कि दूर हो जाएंगे। और इसके बाद से शायद क्रिप्टो करेंसी को लेकर के जो दुनिया भर की दुविधा की स्थितियां बनी हुई हैं वो समाप्त हो सकेंगी। और सबसे बड़ी बात है कि जो इनमें इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनके इंटरेस्ट सुरक्षित हो सकेंगे और बाजार में भी एक प्रकार की स्थिरता आ सकेगी। इसके बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि टाइम्स ऑफ इंडिया में आज एक बहुत अच्छा आर्टिकल छपा है सुब्बा राव जी का, क्रिप्टो नॉट करेंसी। ये आर्टिकल आप लोग जरूर पढ़िएगा यदि आपके लिए संभव हो सके, क्योंकि ये इंग्लिश में है। हिंदी में हम लोग इसका जो अनुवाद तो नहीं कहना चाहिए लेकिन आपके लिए जो जरूरी बातें होंगी वो उपलब्ध कराएंगे। इसमें उन्होंने पॉइंट्स दे देकर के बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि जो हमारा विधेयक आ रहा है उन विधेयकों में किन किन चीजों को शामिल किया जाना चाहिए। हालांकि आप कह सकते हैं कि सर विधेयक के बाद में इसे तैयार करेंगे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन जरूरी आर्टिकल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो सुब्बा राव जी हैं इससे पहले हमारे वित्त सचिव रह चुके हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे हैं और मुझे इनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त है। मैं इनके इंटेलिजेंसिया को जानता हूं, बहुत ही अद्भुत व्यक्ति हैं। अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपकी एनालिसिस पावर को डेवलप करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इसीलिए आप इसे भी पढ़ें और बाद में विधेयक आने के बाद जो बातें हमारे सामने आएंगी बकायदे एडिटोरियल कमेंट्स के माध्यम से या आर्टिकल्स के माध्यम से उन्हें हम तब देखेंगे, तो इसे आप जरूर पढ़ें। दोस्तों एक छोटी सी खबर है भारत और अमेरिका के व्यापार को लेकर के। भारत और अमेरिका के बीच काफी बड़ा व्यापार होता है और अब तो अमेरिका जो है ना भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार भी हो चुका है। दोनों देशों के बीच में पिछले साल जो हमारा वित्तीय वर्ष था लगभग 100 अरब डॉलर का व्यापार की संभावना है, तो ये एक बहुत बड़ा हमारा व्यापारिक साझेदार, पहले चीन था अब अमेरिका हो गया है। तो इन दोनों के बीच में व्यापार से संबंधित जो आशंकाएं होती थी, जो डिबेट होती थी, उनको दूर करने के लिए एक फोरम बना हुआ था, एक मंच बना हुआ था जिसे हम कहते हैं ट्रेड पॉलिसी फोरम, TPF, ट्रेड पॉलिसी फोरम, व्यापार नीति मंच, नाम ही है व्यापार नीति मंच। तो होता यह था कि इस फोरम पर दोनों देश के जो प्रतिनिधि होते थे आपस में बैठ करके उन सारी चीजों को हल करने की कोशिश करते थे, लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 4 सालों से लगभग इस फोरम ने काम करना बंद कर दिया था। उस समय ट्रंप जी का जमाना था और वो अपने ढंग से निर्णय लेते थे। इसकी फिर से शुरुआत हो गई है, एक अच्छी बात है। अभी जो अमेरिका की व्यापार मंत्री हमारे यहाँ आई हुई हैं कैथरीन, उनके साथ बातचीत हुई, तो अब ये फिर से शुरू हो गया है। इसका मतलब है कि व्यापार की संभावनाएं अब फिर से बहुत अच्छी होने लगेंगी और ये इस बात को भी शो करता है कि किस तरह से भारत और अमेरिका एक दूसरे के बहुत करीब आते जा रहे हैं। तो ये केवल एक छोटा सा फैक्ट है जो आपकी जानकारी में होना चाहिए और वो फैक्ट है भारत और अमेरिका के बीच स्थापित व्यापार नीति मंच। बस केवल ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। दोस्तों अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, एमएसपी पर कानून। एमएसपी पर कानून बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, क्या दुविधाएं होंगी, इसके बारे में आपको ढेर सारी बातें पढ़ने को मिल रही होंगी, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बताने के लिए कुछ विशेष है। मैं यहां आपसे थोड़ी सी अलग एंगल पर बात करने जा रहा हूं क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने जा रहे हैं। तो सिविल सर्वेंट कि जो सबसे बड़ी एक विशेषता होती है नीति निर्माता के रूप में, हालांकि नीति निर्माता तो हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, हमारी संसद और हमारी विधायिकाएं हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेट्स का रोल होता है क्योंकि वो सलाह देते हैं, वो चीजों के बारे में बताते हैं। तो फोरसाइटनेस होना बहुत जरूरी है, जिसे आप दूरदृष्टि कहेंगे, कि अगर हम ये कानून बनाते हैं तो क्या क्या हो सकता है। अगर वो फोरसाइटनेस नहीं है तो आप नीति और कानून कुछ भी बनाते रहिए वो फेल हो जाएगा, जैसा कि अभी हम कुछ नीतियों के मामले में देख रहे हैं। अब देखिए कि बकायदे श्रम कानून संहिताएं लाई गई थी, उसके बारे में भी आप पढ़ रहे होंगे कि अब सरकार सोच रही है कि इसे अभी लागू न किया जाए, हो सकता है कि इसे निरस्त कर दिया जाए। इसका मतलब है कि श्रम संहिताओं को लाने से पहले उस पर बहुत अच्छे से विचार नहीं किया गया, कुछ इसी तरह की चीजें होती हैं। तो ये जो दूरदर्शिता है एमएसपी के बारे में क्या है, अगर बाई दिवे इसे लागू कर दिया जाता है तो क्या क्या हो सकता है, और इसके माध्यम से इससे भी बड़ी बात यह है कि आप किस तरीके से अर्थव्यवस्था काम करती है इसे समझ सकते हैं। मतलब टॉपिक तो एक ही है जो मैं कह रहा हूं एमएसपी पर कानून, लेकिन इसके माध्यम से आप बाकायदे अर्थव्यवस्था को समझ सकते हैं, क्योंकि वो इससे जुड़ी हुई चीजें हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए कि सरकार ने, कल मैंने 1500 का उदाहरण दिया था कि 1500 रुपए प्रति क्विंटल, चलिए हम गेहूं कह लेते, गेहूं निर्धारित कर दिया, यानी कि अब हमारे व्यापारी 1500 रुपए प्रति क्विंटल से कम मूल्य पर गेहूं नहीं खरीद सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर सरकार ने यह निर्धारित नहीं किया होता तो 1200 1100 1300 रुपए क्विंटल में व्यापारी खरीदते, तो यानी कि अब अगर वो भारतीय गेहूं खरीद रहे हैं तो उन्हें इतना अधिक कीमत देना पड़ेगा। सोच करके देखिए कि इस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल मार्केट से जुड़ गए हैं। अब पहले जैसी संरक्षणवादी नीति नहीं रह गई है कि हम बाहर से चीजों को आने से रोक सके, आप बाहर से आने से रोक दीजिए दूसरे की चीजों को, आपकी चीजों को भी दूसरे लोग रोक देंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर इंटरनेशनल मार्केट कैसे हुआ, फिर लिबरलाइजेशन कहां से हुआ, फिर आप कैसे कहेंगे कि जो पूरी दुनिया है वो एक बाजार है। होगा नतीजा क्या, नतीजा ये होगा कि बाहर से जो गेहूं आ रहा है वो इससे सस्ता होगा, तो व्यापारी बाहर से गेहूं मंगाना शुरू कर देंगे। जब हमारे पास बाहर से गेहूं सस्ते में, मान लीजिए कि व्यापारी है उसको बाहर से मंगाने पर 1400 रुपए क्विंटल पड़ रहा है, तो यहां के 1500 रुपए क्विंटल क्यों खरीदेगा। और फिर किसानों के इस गेहूं का क्या होगा, 1500 रुपए क्विंटल सरकार ने फिक्स तो कर दिया लेकिन क्या व्यावहारिक है, व्यापारी नहीं खरीदेंगे, किसान रखे रहेंगे, गेहूं खराब होगा, सरकार कितना खरीदेगी, खरीद करके क्या करेगी, सरकार के गोडाउन अभी दुनिया भर के भरे हुए, अनाज नष्ट हो रहा है, बेकार जा रहा है, और अगर सरकार खरीद भी लेती है तो पता लगा कि उसका सारा जो पैसा है वो केवल MSP के तहत खरीदने में ही चला गया, फिर दूसरे कामों के लिए उसके पास पैसा बचेगा कैसे। और अगर भारतीय व्यापारी इसको 1500 रुपए में मान लीजिए खरीदने लगे तो वो जितनी भी चीजों का उत्पाद कर रहे हैं, इनसे निर्मित कर रहे हैं, ब्रेड बना रहे हैं, आटा बना रहे हैं, मैदा बना रहे हैं और दूसरी चीजें बना रहे हैं इस गेहूं से, वो सब भी महंगी हो जाएंगी। अभी जो हल्दीराम है, हमारे हल्दीराम का जो प्रोडक्ट है, आप दुनिया के दूसरे देशों में चले जाइए, जहां भी थोड़े से भारतीय मिलेंगे वहां आपको हल्दीराम का प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। अगर ये हल्दीराम यहां से महंगी चीजें खरीदने के लिए बाध्य हो जाएंगे तो इनका प्रोडक्ट बाहर मार्केट में कैसे बिक सकेगा, सोच करके देखिए। इसीलिए यह एक अव्यवहारिक डिमांड मानी जा रही है। तो दोस्तों, मैंने जो अभी आपसे बात बताई वो केवल ये संकेतित करने के लिए कि किस तरीके से हम एक टॉपिक के आधार पर अर्थशास्त्र को भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको उपलब्ध करा रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और इन्हीं में से दो दोस्तों के नाम हैं अलीश गुप्ता और बिन्नी कुमारी सारण बिहार से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और इसी के साथ ही फ्रेंड्स, आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।